भक्ति आंदोलन देश और काल में दीर्घकाल तक व्याप्त आंदोलन था। अभी भी भारतीय मानस पर इसका बहुत गहरा प्रभाव है। यह आंदोलन देशकाल की सीमाओं में यानी ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत उदार एवं मानवीय था। जो संकीर्णताएँ और क्षुद्रताएँ आज भी हमारी सामाजिक विषमता का कारण हैं, उनसे संत साधक दूर थे। ये साधना सदाचार पर बहुत जोर देते थे। भक्तिबोध अनुभूति और सदाचार का सम्मिलित नाम है। आज देखें तो इनका विश्वबोध या इनकी विचारधारा पिछड़ी मालूम पड़ती है, लेकिन मात्र विचारधारा कोई सामाजिक मूल्य नहीं बन सकती। सामाजिक मूल्य बनता है विचारधारा का आचरण। आचरण अनुकूल न हो तो समाज भिन्न अर्थ ग्रहण करता है। विचारधारा या दर्शन की दृष्टि से भक्त आज गतकालिक लगते तो हों, किंतु आचरणगत दृढ़ता या कथनी करने की एकता की दृष्टि से वे भी पीछे हैं, यह मानना मुश्किल है। हमारा आशय यह नहीं कि आधुनिक भारत ने दृढ़ सदाचारी नहीं उत्पन्न किए। तिलक और गांधी के होते ऐसा कहने का दुस्साहस कौन कर सकता है, लेकिन खुद तिलक और गांधी संतों की परंपरा में ज्ञात होते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आज भी संतों का सदाचार हमें बहुत संदर्भवान लगता है। भक्तों का आचार कैसा था? वे भक्ति को जीवन आचरण में कैसे उतारते थे? भक्तमाल में अनेक भक्तों के जीवन वृत्त संकलित हैं। संकलनाकार्य नाभादास स्वयं प्रसिद्ध राम भक्त थे, कवि थे। उन्होंने एक भक्त पर प्रायः एक छप्पाई लिखा है। नाभादास के बारे में प्रसिद्ध है कि वे डोम थे। डोम बहुत नीची जाति समझी जाती है। नाभादास ने जिस प्रकार इन जीवन वृत्तों को प्रस्तुत किया है, वह भी प्रकट कर सकता है कि वे सवर्ण तो नहीं ही थे। नाभादास का उद्देश्य प्रसिद्ध भक्तों के जीवन के विषय में ज्ञातव्य बातों को प्रचारित करना था, जिससे सुनने वालों के हृदय में भक्ति भावना उदित हो। नाभादास तुलसीदास के समकालीन और परंपरा प्राप्त अनुश्रुति के अनुसार प्रशंसक मित्र थे। यह पुस्तक बहुत लोकप्रिय हुई। इसकी कई टीकाएं लिखी गईं। सम्मत 1769 विक्रम में प्रियादास ने इसकी टीका वर्तिका लिखी। वर्तिका में भक्तमाल के छप्पयों में उल्लिखित घटनाओं को छंदोबद्ध व्याख्या की गई है। भक्तमाल और वर्तिका में भक्तों के विषय में जो घटनाएं वर्णित हैं, वे अनुश्रुतियों पर आधारित हैं। अनेक घटनाएं अस्वाभाविक भी हैं, किंतु इससे यह पता तो निश्चित रूप से चल ही जाता है कि इस देश के लोगों के मन में संतों के आचरण के विषय में क्या धारणा थी। भक्तमाल की घटनाएं एकदम से अनैतिहासिक और किंवदंती नहीं घोषित की जा सकती। इनमें से अधिकांश घटनाएं इतिहास की कसौटी पर ठीक उतरेंगी, किंतु इनके वर्णन पर मध्यकालीन आस्थाओं विश्वासों का रंग अवश्य है। इस वर्णन शैली को शिल्पगत विशेषता समझकर या वर्णन प्रणाली का विचार करके देखा जाए तो उनका महत्व स्पष्ट हो जाएगा। फिर भक्तमाल की सारी घटनाओं को कपोल कल्पित मान लें तो भी यह तो चलता ही है कि 17वीं सदी में संतों के आचरण का आदर्श क्या माना जाता था। इस आदर्श में हिंदू मुस्लिम वर्ण व्यवस्था नारी पराधीनता छुआछूत को किस नज़र से देखा जाता था। इन भक्तों में अवर्ण भक्तों की संख्या काफ़ी है। उन सब का वृत्तांत यह उद्धृत नहीं किया जा सकता। कतिपय प्रसिद्ध संतों की वार्ताओं के ऐसे अंशों का उल्लेख किया जा रहा है जिनसे भक्ति आंदोलन के वर्ण व्यवस्था संबंधी रूप पर प्रभाव पड़ता है। इन संतों के माँ बाप के विषय में, नारियों के विषय में उनके विचारों का भी पता बीच बीच में चल जाता है। नामदेव। नामदेव छिपा जाति के थे। बादशाह सिकंदर लोदी के समकालीन थे। छिपा शायद रंगरेज को कहते हों। शुक्ल जी ने इन्हें दर्जी कहा है। इनके नाना वामदेव जी भक्त थे। उनकी विधवा पुत्री से ये उत्पन्न हुए, कथा यों दी है। पांडुरपुर में जाति के छिपा श्री वामदेव जी परम भक्त हुए। इनकी कन्या थोड़ी ही अवस्था में विधवा हो गई। जब उसकी अवस्था 12 वर्ष की हुई, तब उसके पिता श्री वामदेव जी ने कहा कि श्री पांडुरनाथ जी की जो मेरे गृह में विराजमान है, इनकी सेवा पूजा सावधान मन लगा के भलीभांति से किया कर। तेरे जितने मनोरथ हैं सब के सब पूरे करने वाले ये ही प्रभु हैं। इस प्रकार पिता का उपदेश सुन वह बड़ भागिन सब प्रेम सेवा टहल दिन रात करने लगी। उस पर शीघ्र ही प्रसन्न हो प्रीतम प्रभु ने अति अनूप किशोर रूप में साक्षात दर्शन दिया, जिन्हें देख उसको काम वासना हुई। सर्व काम परक प्रभु ने उसकी कामना पूर्ण की, यहाँ तक कि वह गर्भवती हो गई। छिपा कामदेव हरिदेव जी को भक्त बड़ो ताकि एक बेटी पतिहीन भयजनिये द्वादश बरस माँच भयो तन कही, पिता सेवा सावधान मन नी के करि जानिए, तेरे जो मनोरथ हैं पूरन कर जय जो, ये दत्त चित्त वही के मेरी बात मानिए, करत टहल प्रभु मेघी ही प्रसन्न भय, की निकाम वासनासु पोखी मन मानिए। कालांतर में विधवा के गर्भ की बात जहाँ तहाँ चली, दुष्ट शिरोमणियों की बात बन आई। वामदेव जी के कानों में बात पड़ी तो कन्या से पूछा, कन्या ने सब बता दिया। बालक उत्पन्न हुआ, नामदेव नाम रखा गया। विधवा को गर्भ ताकि बात चली ठौर ठौर, दुष्ट सिर मौरिन की भई मन भाए, चलत चलत वामदेव जू के कान परी, करी निर्धार प्रभु आप अपनाइये, जय जो प्रगट बाल नाम नामदेव धरियो आदि। अर्थात नामदेव विधवा के संतान थे। भगवान के पुत्र होने का मतलब क्या होता है इसे बताने की जरूरत नहीं। रैदास, रैदास चमार थे। नाभादास ने उनके विषय में लिखा, सदाचार श्रुति शास्त्र की अविरुद्ध उनकी वाणी है। उनके निर्छीर के निर्णय को परमहंसों ने हृदय में धारण किया, राज सिंहासन पर बैठकर अपनी जाति का परिचय दिया। लोग पर्णाश्रम का अभिमान तजकर उनके पदरज की वंदना करते थे। उन रैदास की वाणी विमल और संदेश संदेह की ग्रंथि को खंडित करने में निपुण है। सदाचार सुति शास्त्र वचन अविरुद्ध उचारियो, नीर खीर विवरण परम हंसनी उर धारियो, राज सिंहासन बैठी ज्ञाति पर तीति दिखाई, वर्णाश्रत अभिमान तजी पदरज बंद ही जासु की, संदेह ग्रंथि खंडन निपुण बाणी विमल रैदास की। रैदास चमड़ा मोल लाके जूता बनाकर बेचते थे। भक्तमाल के अनुसार रैदास के पास कहीं से धन आ गया। उन्होंने मंदिर इत्यादि बनवाया, चमार ने मंदिर बनवाया, पूजा शुरू की तो ब्राह्मणों ने विरोध किया। ब्राह्मण लोगों ने राजा की सभा में जाके पुकारा, रैदास को गालियां दे देकर कहने लगे, इसे मंदिर में पूजा करने का अधिकार नहीं। प्रीति रस दास रसास रैदास हरि सेवत हैं, घर में दुराय लोक रंजनादि टारी है, प्रेरि दिए हृदय जाय द्विजनी पुकारि करी, भरी सभा निप आगे मुख गारी है। चित्तौड़गढ़ की रानी झाली रैदास की शिष्या हुई, यह देखकर ब्राह्मणों की आग लग गई। फिर वे लोग राजा के पास गए, कहते हैं कि रैदास के बुलाने पर ठाकुर जी सिंहासन पर विराज गए। रानी झाली ने रैदास को चित्तौड़ बुलाया। ब्राह्मणों ने भंडारे में भोजन नहीं किया क्योंकि उसी भंडारे में रैदास की पूरी मिठाई बनी थी। पसत चितौर माँ जरानी एक झाली नाम, नाम पिनु कान खाली आने शिष्य भई है, संग हुते विप्र सुनी छिप्रतन आगे लागे, भागे मत रिप आगे भीर सब गई है। यानी रैदास चमार थे, उन्होंने चित्तौर की रानी को शिष्य बनाया, ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया। कबीर, कबीर के जन्म माँ बाप के विषय में नाभादास ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन जो लिखा वह महत्वपूर्ण है। कबीर ने भक्ति विमुख धर्म को अधर्म कहा, भजन के बिना यज्ञ व्रत दान को तुच्छ बताया। रामायणी शब्दी शाखी हिंदू तुर्को दोनों में प्रमाणित की। कबीर ने पक्षपात नहीं किया, सबके हित की बात कही। आरुण दशा में स्थित थे, वह मुंह देखी नहीं करते थे। कबीर ने वर्णाश्रम और छहों दर्शनों की इज्जत आबरू नहीं रखी। भक्ति विमुख जो धर्मसो अधर्म करी गयो, जोग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुच्छ सिखायो, हिंदू तुरक प्रमाण रमायणी शब्दी साखी, पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की भाखी, आरुण दशा हुए जगत पर मुख देख नहीं मानी, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। कबीर ने रामानंद को अपना गुरु बनाया बताते हैं। भक्तकाल में वर्णित है कि कबीर ताना बाना बुनकर जो पाते थे उसे असहायों में बांट देते थे। खाने पीने की तकलीफ उन्हें शायद नहीं थी, बल्कि भक्तमाल से पता चलता है कि भगवत कृपा से उन्हें कहीं कुछ प्राप्त हो गया था। रैदास के विषय में भी ऐसा ही प्रसंग है। यह महत्वपूर्ण संकेत है। इससे पता चलता है कि इनको व्यवसाय से खाने पीने भर को या कुछ ज़्यादा भी मिल जाता था। सो कबीर के दान की बात ब्राह्मणों में फैली तो बिगड़े, रे जुला है तू धन शूद्रों में बांट देता है, हमें क्यों नहीं बुलाता। दियो छोड़ी तानो बानो सुख सरसानो ही है, किए रोष धाय सुन विप्र तजे धीर को, क्यों रे तू जुलाहे धन पाए न बुलाए हमें, शुद्रनी को दिए जावे कहीं यो कबीर को। कबीर ने कहा, क्यों जी मैं कहीं चोरी करता हूँ? ब्राह्मणों ने कहा, तुम्हें शूद्रों का मान किया, इसी में हमारा अपमान हो गया। कबीर चतुर थे, मौका देखकर खिसक गए। क्यों जो उठी जाऊं कछु चोरी धन ल्याऊं, नित हरि गुण गाऊं को राह में मैं न मारी है। उनको लय मान कियो यही मैं अपमान भयो, दियो जो पै जाय हमें तो ही तो जियारी है। घर मैं तो ना ही मंडी जाए तुम, रहो बैठे निठी के छुटायो, पैंडो पीछे ब्याध इतारी है। कबीर के विषय में एक विचित्र वार्ता यह मिलती है कि अपनी लोकप्रियता बढ़ती देख कर उन्होंने एक ऐसा काम किया जिससे लोग उन्हें सम्मान करना बंद कर दें, एक विषय के साथ घूमने लगे मानो उसके रंग में रंगे हो। वर्म की लई संग मानो वाही रंग रंगे, जानव यह बात करी डर अति भीर कहे। कबीर का यह कार्य देखकर निंदक खलगण बहुत प्रसन्न हुए और कबीर पर अपयश हुआ, संत लोग डरे। कबीर का प्रभाव घटा नहीं उल्टा बढ़ गया। ब्राह्मणों के हृदय में पुनः मत्सर उत्पन्न हुआ और वे सिकंदर लोदी के पास आए। कबीर की माँ भी ब्राह्मणों के साथ हो ली। इस बार काजी ने कबीर से कहा, बादशाह को सलाम करो। कबीर ने कहा, मैं सिर्फ राम को जानता हूँ, दूसरे को सलाम करना हराम समझता हूँ। देखी कई प्रभाव फिर उपजियो अभाव, द्विज आयो बादशाह सो सिकंदर सुनाओ है, विमुख समूह संग माता हो मिलाए लाई, जाय के पुकारे दुज दुखायो सब गांव है। ल्यारो रे पकर वाग को देखो मैं मकर कसो, अगर मेटाओ गाढ़े जकर तनाव है। आने ठाड़े किए काजी कहते सलाम करो, जाने न सलाम जाने राम गाढ़े पाँव है। कही काजी पाजी सुनो ये माँ मिजाजी करो, सिर को झुकाए बादशाह को सलाम है। जाना न सलाम कहो सांची में कलाम, बात दूसरी हराम जानो एक राम है। सिकंदर लोदी ने कबीर को यातना दी। कबीर का प्रभाव ऐसा था कि ब्राह्मण भी उनके शिष्य हुए। इस कारण अन्य ब्राह्मण उनके ब्राह्मण शिष्यों को कष्ट देते थे, कष्ट भी ऐसा कि प्रहार मार्मिक करते थे, यानी उनको बेटियों की शादी रुकवा देते थे। तत्वाजी और जीवाजी ये दो ब्राह्मण कबीर के शिष्य हुए। कबीर तो उन्हें शिष्य बनाकर काशी चले आए। बाद में ग्राम देश के ब्राह्मणों ने कहा, कबीर की जात तो जानते हो न, तत्वाजीवा का ब्राह्मणत्व नष्ट हुआ। ब्राह्मणों ने दोनों को जाति से अलग कर दिया। इनकी कन्या का किसी ने भी विवाह न किया। दोनों भाई काशी पहुंचे कबीर के पास। कबीर ने जो समाधान किया वह किसी के और बस का भी नहीं था, वह समाधान कबीर ही कर सकते थे। दोनों भाइयों की एक एक कन्या एक एक पुत्र हैं, सो आपस में विवाह कर दो, इसमें कोई बुराई नहीं है। काना कानी भई द्विज जाने जाती गई, मानती न्यारी करी दई को बेटी नहीं लेत है, चलियो एक काशी जहाँ बसत कबीर धीर, जाए कही पीर जब पूछियो कौन हेत है, दो भाई करो आप में सगाई, होय भक्ति सरसाई न धिराई चित चेत है, आए कहे करी परी ज्ञाति भर खरी, उह कहाँ उर धरी कछुमति हूँ अचेत है। नरसी मेहता। नरसी मेहता के दो कन्याएं थीं, एक का नाम कुंवर सेना दूसरी का नाम रतन सेना था। बड़ी कन्या अपने पति को तजकर पिताग्री में रहती थी और दूसरी ने विवाह ही नहीं किया। जूनागढ़ से दो गायिकाएं आई, वे सामान्य जाति की थी। वे केश मुड़ाकर नरसी के पास ही रह गई। श्री नरसी की दोनों कन्याएं और वे दोनों गाने वालियां गा बजा कर नाना प्रकार के भाव बताते हुए भगवान के सामने नाचती। सालंग ब्राह्मण नरसी के मामा थे, वे जूनागढ़ राजा के मंत्री भी थे। सालंग ने राजा से कहा, नरसी विपरीत आचरण कर रहा है। राजा ने उसे सभा में बुलाया। नरसी चारों महिलाओं के साथ गाते बजाते राजसभा में पहुंचे। राजा ने पूछा, यह कौन सी रीति है कि तुम स्त्रियों को अपने पास रखते हो? नरसी बोले, तुम भक्ति की गंध से भी दूर हो, पोथी पढ़े हो लेकिन बुद्धि पर धूल पड़ी है। सुखदेव ने मथुरावासी भंग स्त्रियों की प्रशंसा की है या नहीं? मिली उभय सुता रंग झिली संग गयान है, चायनी सुनित करे भाय नि बताई के सालंग है। नाम मामा मंडलिक मंत्री रहे, कहे विपरीत बड़ी राजा सौ सुनाई कहे। बड़े बड़े दंडी पंडित सामाजिक यो करो वाकी मंडी देश दीजिए छुटाई के। आए चारो चौबेदार चलो जो विचार कीजे, भयो दरबार हमें दिए है पठाई कहे। चारो तुम जाओ हरी भयो हमें राजा डर, सके कहाँ करी आज चले संग संग ही। नाचत बचावत ये चली डिंग गावत, सुभावन मगन जानी भिजी गई रंग ही। आय वाही भांति सभा प्रवाहत भई, तव बोले कहा रीति युवत प्रसंग ही। कहीं भक्ति गंध दूरी पड़े पुथि परिधुरी, शीर्षुक सराय तिया मथुरा ने भग्न की ही। भक्तमाल के उल्लेखों से भक्ति आंदोलन के विषय में मुख्य रूप से तीन बातें स्पष्ट हो जाती हैं। पहली बात यह कि भक्ति आंदोलन में अवर्ण एवं तथाकथित निम्न जातियों का बहुत बड़ा योगदान था। दक्षिण में आलवारों की परंपरा उत्तरी भारत में क्षीण नहीं हुई बल्कि उसका विकास हुआ। भक्तमाल ही नहीं, 84 वैष्णवों की वार्ता और 200 वैष्णवों की वार्ता भी इसकी पुष्टि करती है। वैष्णवों की वार्ताओं में अनेक वैष्णव अवर्ण हैं, इनमें से कुछ के शीर्षक का उल्लेख मात्र किया जा रहा है। यादवेंद्र दास कुम्हार की वार्ता, विष्णुदास छिपी की वार्ता, सुतार कारीगर की वार्ता, नरहर दास गोड़िया की वार्ता, अली खान पठान की वार्ता, पाथो गुजरी की वार्ता, गोपीनाथ दास ग्वाल की वार्ता, कुनबी पटेल की वार्ता, एक वेश्या की बेटी की वार्ता, एक कुंजरी की वार्ता, एक कुनबी वैष्णव की वार्ता, एक चोर वैष्णव की वार्ता, एक डोकरी की वार्ता, एक वेश्या की वार्ता, एक धोबी की वार्ता, एक चूहड़ों की वार्ता, पठान के बेटा की वार्ता, एक नाव वैष्णव की वार्ता, एक चूहड़ों जिन्होंने पंडितन को पाछो फिरियो, सावक की बेटी की वार्ता, धोबी कलावल की वार्ता, पारधी की वार्ता, एक लोहार की वार्ता, रसखान पठान की वार्ता आदि। इन लोगों को वैष्णव भक्त का आदर्श मानकर वार्ताओं में स्थान दिया गया है। इनमें कुनबी, कुंजड़ा, लोहार, धोबी, नाऊ, भंगी, वेश्या, मुसलमान सब शामिल। दूसरी ध्यातव्य बात जो भक्तमाल की टीका वर्तिक प्रकाश में प्रायः वर्णित मिलती है, इनका विरोध ब्राह्मणों ने किया। भई द्विज सभा प्रायः आता है, यह ब्राह्मण समाज के रूढ़िग्रस्त तबके का प्रतिनिधित्व करते हैं। जाति प्रथा स्थिर समाज में फलती फूलती है, जहाँ कहीं भी कुछ विचलन दिखलाई पड़ता है जाति प्रथा के ठेकेदार विरोध करने लगते हैं, लेकिन यह बात सभी ब्राह्मणों पर लागू नहीं की जा सकती। रामानुजाचार्य रामानंद ब्राह्मण ही थे, तत्वाजीवा भी ब्राह्मण थे और जो कबीर के शिष्य हो गए, जिनके रोटी बेटी ब्राह्मणों ने बंद कर दी थी, रूढ़िग्रस्त ब्राह्मण भक्तों का भी विरोध कम तीव्रता से नहीं करते थे। तुलसीदास स्वयंवर व्यवस्था के समर्थक थे, किंतु उन्हें भी ब्राह्मणों का कुभाजन बनना पड़ा था। एक समय एक ब्राह्मण हत्या करके आया, वह दीन सर से राम नाम पुकारता था और कहता था भिक्षा दीजिए। तुलसीदास ने कहा, जब तुमने राम का नाम ले लिया तो पवित्र हो गए, जाओ हमारे साथ बैठकर भोजन करो। तुलसी ने उस हत्यारे के साथ भोजन किया। ब्राह्मणों ने सुना तो सभा की। गोस्वामी जी को बुलाकर पूछा, बिना प्रायश्चित के हत्यारे का पाप कैसे छूटा? पंक्ति से अलग किए हुए को बिठाकर आपने भोजन किया, यह अनुचित किया। तुलसी ने कहा, तुम शास्त्र पढ़ते हो लेकिन तुम्हारा मत कच्चा है, हृदय से अंधकार दूर नहीं होता। हत्या कर विप्र एक तीर्थ कर न आयो, कहे मुख राम भिक्षा डारियो हत्यारे को। सुनिय विराम नाम थाम मैं बुलाई लियो, दियो ले प्रसाद कियो शुद्ध गायो प्यारे को। भई द्विज सभा कही बोली के पठाए आप, कैसे गयो पाप संग लेके जय न्यारे को। पोथी तुम बाचो ही ये सार नहीं साँचो, आजू ताते मत कांचो दूर करें कंथ्यार तो। इन वार्ताओं उल्लेखों से प्रकट होता है कि वैष्णव भक्ति जाति पांति की अपेक्षा केवल सिद्धांत या प्रवचन में ही नहीं करते थे, इसे वे अपने जीवन में भी उतारते थे। इसीलिए उन्हें समाज के रूढ़िग्रस्त तबके का कोपभाजन बनना पड़ा था। तीसरी बात यह प्रकट होती है कि अवर्णों की ही भांति इस आंदोलन में नारी समाज ने भी महत्वपूर्ण योगदान किया था। भारत में पहली बार धार्मिक आंदोलन था जिसमें गृहस्थ नारियों ने इतना बड़ा हिस्सा लिया था। इसमें हिस्सा लेने से भी समाज के रूढ़िग्रस्त लोग विरोध करते थे। भक्ति आंदोलन के अनेक प्रसिद्ध महात्माओं ने अपने देशकाल को देखते हुए नारी विषयक उदार रुख अपनाया। भक्ति आंदोलन नारी को घर छोड़कर बाहर आने की भी प्रेरणा देता था। घर जो नारी पराधीनता का मध्यकाल में प्रतीक बन गया था और आज भी बहुत दूर तक बना हुआ है। नामदेव कबीर जैसे संतों का जन्म ही असामान्य स्थिति में हुआ था। समाज ने इन सब बातों या अपवादों के बावजूद उन्हें इतना सम्माननीय कैसे माना, यह चमार या भंगी को संत मानने से कम आश्चर्यजनक नहीं, वह भी मध्यकाल में। निश्चय ही भक्ति आंदोलन अवर्ण जातियों को भावना के धरातल पर समान लाने की ही तरह नारी को एक सीमा तक घर की चहारदीवारी से बाहर निकलने का निमंत्रण देता था। धर्म के ही नाम पर सही वह नारी को भी पुरुष का सहभागी बनाकर इस क्षेत्र में उतारता था। उसे शारीरिक विलास का भी साधन नहीं मानता था। भक्ति आंदोलन में नारियों का योगदान कितना व्यापक था, यह इस तथ्य से भी प्रकट होता है कि हिंदी साहित्य के चारों कालों में संभवतः आधुनिक काल को छोड़कर भक्ति काल में कवित्रियों की संख्या सबसे ज्यादा है। प्रोफेसर सावित्री सिन्हा ने इस विषय पर शोध प्रबंध भी लिखा है, मध्यकालीन हिंदी कवित्रियां। रामानंद ने सुरसुरानंद के साथ उनकी पत्नी को शिष्य बनाया। भक्तमाल के एक छप्पे में कलयुग युवती जन भक्ति की सूची दी गई है। इनमें सीता, सहचरी, झाली, सुमति, शोभा, भटियानी, गंगा, गौरी, उबीठा, गोपाली, गणेश देव, मानमती, सत्यभामा, यमुना, कोली, रामा, मृगा, जुगजेबा, कीकी, कमला, देवकी, हीरा, हरिचेरी का उल्लेख है। सीता, झाली, सुमति, शोभा, प्रभुता, उमा, भटियानी, गंगा, गौरी, कुंवर, उबीठा, गोपाली, गणेश, देरानी, कला, लखा, पितगढ़ो, मानमती, शुचि, सती, भामा, यमुना, कोली, रामा, मृगा, देवा, देवभक्तन, विश्रामा, जुगजेवा, कीकी, कमला, देवकी, हीरा, हरिचेरी, पोषे, भगत, कलयुग जीवती, जन भक्त राज, महिमा सब जाने जगत। यह सूची कितनी अपूर्ण है, इसका पता इसी बात से लगता है कि इसमें मीरा, कर्मा, सहज जैसी प्रसिद्ध भक्त कवित्रों का ही नाम नहीं। यह अपूर्ण सूची भी केवल हिंदी क्षेत्र से ही संबंधित है। भक्तमाल के उल्लेख और वैश्रवण की वार्ताओं को देखने से लगता है कि इस आंदोलन में सामान्य नारियां ही नहीं, वे नारियां भी सम्मिलित हुई हैं जिन्हें हेय दृष्टि से देखा जाता था। इसमें से अनेक वेश्याएं थीं। नरसिंह मेहता की लड़कियों के साथ दो गाने वालियां रहती थीं। नामदेव बाल विधवा के संतान थे। कबीर के विषय में भी कुछ ऐसा ही कहा जाता है। इसे यह ज्ञात होता है कि भक्ति आंदोलन नारी को शरीर मात्र नहीं मन और हृदय से मुक्त मनुष्य के रूप में देखता था। सदाचार पर जितना बल भक्तों ने दिया है उतना कुछ ही धार्मिकों ने दिया होगा। जो सदाचार की महिमा जानता है वह मन की चंचलता की शक्ति भी जानता है। जो बड़ा होता है वही क्षमा कर सकता है। भगवान यदि पतितों का उद्धार करने वाले हैं, यदि वे पुरुष को शरण में ले सकते हैं तो क्या नारी का उद्धार नहीं करेंगे? क्या भगवान की भी निगाह में पुरुष और स्त्री का भेद बरकरार है? भक्ति आंदोलन इसका उत्तर नहीं देता था।